né? सोच नहीं पा रहा था कि इस प्रोग्राम में इतने व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति और महिलाएं आएंगी, इसलिए सबका मैं यथाजोग्य अभिवादन करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से यहाँ के भक्तों ने एक टीम के रूप में काम किया है, मैं चाहता हूं कि यह लगातार बना रहे। सभी लोग मिल करके परस्पर छोटा बड़ा नहीं, सभी लोग मिल करके भविष्य में ऐसा हाइट प्रोग्राम करेंगे जैसे कि सुनकर के मुझे भी खुशी और मैं सहज ही अपने और प्रोग्रामों को भी छोड़ करके यहाँ पर अभी तो हम उद्धव संदेश में हम प्रवेश नहीं कर सके, उसकी अभी भूमिका चल रही है। जब भूमिका में ही इतना आनंद और रस है तो उद्धव बाद में कितना क्या होगा आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। वक्ता भी रोएगा और श्रोता भी रोएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक मैंने आरंभ किया और कहा है, भविष्य में यदि हो सका, आप लोगों की इच्छा होगी, मैं फिर आऊंगा और अवशिष्ट जितने भी रह गए हैं। भागवत प्रेम ही में ही जीवन की सफलता है। यदि किसी को भागवत प्रेम नहीं है, विश्व की सारी संपत्ति आप उसे सुखी शांति नहीं बना सकते। सबई पुनसान परो धर्मो जतो भक्ति रतो, भागवत सुखदेव गोस्वामी ने लिखा, जीव मात्र के लिए स्वयं जो भगवान कृष्ण हैं उनकी भक्ति ही परम धर्म है, और जगत में तो धर्म है कि परम धर्म नहीं, तो ये परम धर्म, इसी से जीव का कल्याण। धन से नहीं, संपत्ति से नहीं, पद गरिमा से नहीं, ये भक्ति ही आप लोग अपनाएंगे, उनका नाम ग्रहण करेंगे, कृष्ण से कुछ संबंध बने, उनके प्रति प्रेम को आपका जीवन साथ हो। इसलिए मेरा यह सब लोगों के साथ में अनुरोध है कि टीम बना करके जैसे अभी चल रहे हैं, मिलजुल करके ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि और लोगों का भी भक्ति में रुचि बढ़े और उनका जीवन साथ हो। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। एक बात और, भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा त्याज्य नहीं है, सभी पड़ा, सभी के लिए एक ही सूर्य बनाया, एक ही पानी बनाया, एक ही हवा बनाया, किसी में भी भेदभाव नहीं करते, छोटे बड़े सब नहीं करते। इसलिए उसी तरह से गुरु के हृदय में भी ऐसी भावना है, किसी को साइड कर, किसी को छोड़ करके नहीं, सबको यथायोग्य उसमें पुत्र हैं, सभी पुत्र के प्रति पिता का जैसे भाव रहता है, ऐसे गुरु का भी सब शिष्यों के प्रति, किसी के लिए किसी को वो छोड़ नहीं सकते। परस्पर लोग लड़ सकते हैं किंतु गुरु के लिए सभी बच्चे अपने एक समान हैं, किंतु शिष्यों का भी कुछ कर सकते हैं। कैसे गुरु को सेवा हो सकती है, भगवत भजन हो सकता, इनका उनको भी चाहिए। किसी के कहने से कोई गुरु किसी को छोड़ नहीं सकता, इसलिए सभी उनके प्यारे हैं, इस विषय को ध्यान रखा।
धन्यवाद। भाई थे, बड़े भाई जैसे श्री राजा का, उन्होंने आर्थिक मानसिक शारीरिक सभी विकास के अनुभव प्रदान किया। स्वामी भक्ति वेदांत श्री तीर्थ महाराज श्री कृष्ण किशोर दास आइए, श्री अरविंद दास, अरविंद दास श्री गिरधारी दास, श्री जीव प्रिय दास, श्री दीनानाथ दास, आपको भारत में दर्शन नहीं मिलेंगे। त्योहार हमारा इस तरह एंड नाउ इज फेमस एज अप्रूव बट एन
अप्रूव
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्राप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतविदं मुनिमान् तवैवास्मि नमामि त्वया विना इति विज्ञैराधि मैं सबसे पहले अपने परमार्थतम गुरुपाद पद्मनिष्ठ लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों मन में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति तत्पश्चात पादगण वैष्णव वैष्णवगण सज्जन और रसिक श्रोता बने सब लोगों को यथा योग्य अपना अभिवादन मैं करता हूँ। विशेष करके जो कथावाचक कथा श्रोता है यदि एक न रहे और वक्ता भी रहे भी तो किसको सुनाएगा। इसलिए भागवत में ऐसा कहा गया है श्रोता ही यदि मिले तब तो कथा होगी या श्रोता नहीं मिले तो कथा नहीं होगी। इसलिए श्रोताओं को भी प्रणाम करने को कहा गया। यहाँ पर हरि कथा हो रही है उनको भी प्रणाम, जो वक्ता है उनको भी, जो उद्योगता किसी न प्रकार से उद्योग किया है कि ये हरि कथा हो उनको भी, जो प्रेरणा देने वाले हैं सबको प्रणाम करके तब भाग आरंभ कर। कल हमने बतलाया जो उद्धव जी को कृष्ण हाथों में हाथ लेकर के बतलाया पितृ नौ प्रतिमा बह गोपीनां मयूगावधिं मत्संदेशे। माता पिता वियोग में अस्थिर है, ब्रजवासी भी है, किंतु गोपियों में प्रेम की और विरह की अवधि सीमा है, चरम सीमा। इसलिए उद्धव जी को कह रहे हैं कि माता पिता को सांत्वना देना, किंतु गोपियों को सांत्वना नहीं दे सकते तू। माता पिता को कुछ सांत्वना दे सकते हैं अपने शब्दों में, किंतु गोपियां तुम्हारे सांत्वना से अतीत हैं, उनकी आग और भी भड़क उठेगी। इसलिए मेरे संदेश जो तुमको दे रहा है ये सुनाना, तो यदि हो सके तो उनको सांत्वना मत देने जाना, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सांत्वना की बात नहीं कही, गोपियों को क्या कहा, वो मेरी मेरे संदेश से ही वो कुछ उनका हो सकता है, विरह का तीव्रताप कुछ हो जाएगा। एक बात और यहां पर विचारणी है कि कृष्ण ने उद्धव जी को क्यों भेजा, दूसरे किसी को भेज देते। और जब उद्धव कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, आगे बतलाए, उनके सखा, उनके दूत हैं, उनके दास भी हैं, उनके कमांडर इन चीफ भी हैं, सब कुछ है, किंतु ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो यह है, कृष्ण सोच रहे हैं, बड़े विकल हैं गोपियों के प्रेम में, माता पिता के बड़े विकल हो रहे हैं। उनको कोई ब्रज में ऐसा तन, वहां मथुरा में कोई नहीं है जो उनको सांत्वना दे सके, कोई नहीं। गोपियां हैं, परस्पर मिलती हैं, एक दूसरे से अपना विरह ताप बतला करके उनका कुछ उपशम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, दुखों में दुख परस्पर बांट। ललिता जी कह सकती हैं, विशा इतना मत रो, कृष्ण कहीं दूर है, तुम्हारी हृदय में ही तो है, और भी बातें कह करके उनको सांत्वना दे सकती, दुख बांट लेंगी, वो भी रोएंगी उनके साथ में। किंतु कृष्ण के साथ में मथुरा में ऐसा कोई नहीं है जो उनके साथ रो ले और गोपियों के संबंध में कुछ बातें उनसे कह ले, दुख को बांटने वाला नहीं। जो नहीं समझेगा वो, जिनको कांटा लगे सोई जाने, दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए कि उद्धव को तो कांटा लगा नहीं है, उनका संग भी नहीं किया है, इसलिए इनको ब्रज में भेजो, जो गोपियों की कृपा से वो कुछ प्रेम का महत्व समझे और फिर वहां से शिक्षा करके आएगा, तो मैं ब्रज की बातें कह करके उनको सांत्वना कुछ दे सकूं। ये फितर उनका गूढ़ रहस्य था। कृष्ण ये समझते हैं, धनी भाती जानते हैं कि कृष्ण मैं प्रेम का पूरा नहीं जानता, प्रेम के पढ़ाई अक्षर है ना, पढ़ाई अक्षर प्रेम, दो अक्षर जानते हैं, आधा अक्षर उनको मालूम नहीं, कृष्ण को पूरा प्रेम नहीं है। राधिका के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उनके अंदर नहीं। इसलिए जहां पर जिस पाठशाला में मैं प्रेम का पाठ पढ़ा, उसी स्कूल में कॉलेज में उद्धव को भी भेज दूं, कुछ शिक्षा लेकर के आए, प्रेम का कुछ पाठ पढ़ करके आए, तब इसे बातें करूंगा, अभी हमारी बात नहीं समझेगा। कृष्ण ने प्रेम का पाठ पाठशाला में सीखा, कहां उसके प्रिंसिपल हैं, वो प्रेम विद्यालय है और उसमें प्रिंसिपल कौन है, राधा जी, और डिपार्टमेंटल हेड या आर्ट सखियां हैं, और आर्टों के भी और कितनी न जाने वहां पर प्रविभाग विभाग प्रविभाग इत्यादि, तो ये प्रेम पाठ पाठ पूरा होगा। उद्धव को भेजा, उद्धव गए पाठशाला में, गए तो अभी टीचरों के पास में नहीं गए, प्रोफेसरों के पास में, प्रिंसिपल के पास में या और किसी को, गेट पर ही एक कोई बैठा था जो किस लिए आए हो, क्या बात हो, तो मैं एडमिशन लेने के लिए आया, अच्छा तो मैं परीक्षा तुम्हारी जांच कर लूं, तब वहां जाकर के तुम्हारा एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दूसरे जो परीक्षक थे ये योग्य है कि नहीं, उन्हीं के पास गए तो देखा ये यहां पर एडमिशन लेने योग्य नहीं,
वहीं से कैंसिल कर।
उद्धव जी ने स्कूल में तो एडमिशन पाया नहीं, किंतु कुछ कुछ उद्धव जी जब गए हैं पाठशाला को देखा, उसके चारों तरफ में गए, उसका उनको प्रणाम किया और जो कुछ उससे मिल सका बस उसी से संतुष्ट हो गए। यहां पर एक और बात है, उद्धव ने जब कृष्ण उनको समझा करके ब्रज में भेजा, ओ उद्धव तुम जाओ, उद्धव जी तैयार हुए। पहले तो वो कुछ उदास हो गए, कृष्ण को छोड़कर के भला मैं ब्रज में इतना दिन कैसे रह सकूंगा, मेरे लिए संभव नहीं एक क्षण भी रहना। कृष्ण कृष्ण कहा कि उद्धव चिंता मत करो, मैं थोड़े ही यहां पर हूं, मैं तो पूर्ण रूप में वहां हूं, मेरा एक कलेजे का एक टुकड़ा मात्र यहां है, आंशिक रूप में यहां वहां नहीं, वहां पर मैं संपूर्ण, चिंता मत करना, तुम ब्रज में जाएगा तो देखेगा कि हाँ मैं वही हूं, इसलिए चिंता मत करो। कृष्ण अपने हाथों से हाथों में लेकर रथ चल रहा था, सोने का रथ, और ये बगल से चल रहे थे, अभी उठ नहीं गए थे, उद्धव को अभी उठा नहीं रहे थे। कृष्ण उद्धव जी ने देखा कि ये रोते रोते सभी आएंगे, बहुत समय लगेगा, उनका रोना इनसे देखा नहीं गया, कृष्ण को चरणों में प्रणाम। कृष्ण ने कहा जी देखो एक बात करो, दाऊ जी के पास में चले, उनको प्रणाम करके जाना। तो दाऊ जी के पास में गए, उनको प्रणाम, कृष्ण ने कहा जी मैं उद्धव को वहां पर भेज रहा हूं, पिताजी और माताजी को सांत्वना और गोपियों को भी सांत्वना देने के लिए भेजो, आप आशीर्वाद कीजिए। जय कृष्ण उद्धव जी प्रेम। दाऊ जी बोले भैया तुम दूध के द्वारा उनको सांत्वना देगा, मैंने कहा तुमसे कितनी बार, चलो दो भाई चले उनको सांत्वना दे, उनका दुख दूर नहीं हुआ जब तक तुम नहीं जाते। कृष्ण बोले आप आशीर्वाद कीजिए और सांत्वना देकर के। उन्होंने उद्धव जी के सिर पर हाथ रखा, फिर उद्धव को लेकर के गए रोहिणी मैया के। रोहिणी मैया जी उस समय में मथुरा से मथुरा में आ गए, इसलिए उनके पास में गए, उनको प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा मैया इनको भेज रहा हूं उद्धव को, जरा उनके सब लोगों को ब्रजवासियों को सांत्वना दे। जब बाछा मैंने बेटे तुम गोपियों की ओर सांत्वना दोगे अपने दूध के द्वारा, मेरे लिए संभव कर, इसके लिए संभव नहीं है, ये नहीं कर सकता मैं जानती हूं। तो उन्होंने कहा, रोने लगे कृष्ण, और क्या उपाय मैं क्या करूं, मैं तो जान नहीं सकता। क्यों जाने के साथ ही साथ में वो वसुदेव और देव की मैया यह रोने लगती हैं, उनके बिना आदेश का कैसे जाऊं, और वो इतने रोने लगते हैं कि उनको सांत्वना देंगे, इसलिए मैं भेज रहा हूं आप आशीर्वाद। उन्होंने आशीर्वाद, और फिर कृष्ण ने अपने अंग की माला वैजयंती जो पहने थे वो दे दिया, पहना दिया, अपने आभूषण भी उनको पहना दिया, सब कुछ अपना, उनके अपना उतरा हुआ पीत वस्त्र भी उनको दे दिया। उद्धव वैसे देखने में कृष्ण ही जैसे थे, सांवरे रंग के, कृष्ण के बराबर ही, गुण भी वैसे, बोली भी वैसे, सब प्रकार से उद्धव, और अपना वस्त्र उनको दे दिया, सब वैजयंती माला दे दी सब, और देने के बाद उद्धव जाओ चिंता मत करो जल्दी से आना। उद्धव जी रथ में बैठे, इति उक्त उद्धव राजन संदेश भ्रतुरादित आदाय रथम आरुह्य प्रजौ नंदगोकुल। नंदगोकुल जाते जाते जोग माया ने एक ऐसी लीला की अद्भुत जाते जाते ही शाम हो गई और गायें लौट रही हैं, करोड़ों गायें, उनके खुरों से ऐसी धूल उठी चारों तरफ में धूलिमय हो गया। कोई किसी ने उद्धव जी को वहां पर धूलि के अंधकार में नहीं देखा कि उनका रथ पर चढ़ करके वो आ रहे हैं। नंद के द्वार पर गए, रथ को खड़ा कर दिया, गायें धीरे 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 घरों में प्रवेश करते हैं, अपने खिड़कियों में खिड़कों में अपने जहां पर गौशाला है वहां पर जब प्रवेश करने लगे, धीरे धीरे धूल शांत हो गया। अब कुछ अंधकार भी था, वो भी शांत शांत तो हो ही गई थी। वहां पर लोगों ने देखा ये एक व्यक्ति बड़ा सुंदर कृष्ण ही जैसा औरत पर सोने का चढ़कर क्या है, रथ को खड़ा कर दिया है वहां पर। कृष्ण जहां पर बैठते थे बगीचे में वहीं पर आकर के वो बैठा। नंद बाबा को खबर दिया उन बच्चों ने, नंद बाबा बाहर, अरे उद्धव तुम कैसे आए? बहुत लाड प्यार से उनको ले गए घर में, कुछ बहुत भूखा है, बहुत सवेरे चला था ना, उनको भोजन की प्यास। इसके पहले जब ही वो प्रवेश किए, जोग माया ने भी ऐसा किया कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण ने सोचा ये उद्धव तो जा रहा है और समझ रहा कि मैं यहां वहां नहीं हूं, किंतु मैं जैसे जिस समय में वहां था ब्रज में और सब लोग बड़े प्रेम में विवल थे, गायें भी बड़ी आनंदित, बछड़े भी और सखा भी, माता पिता सब और गोपियां तन्मय हमारे प्रेम में रहती हैं, वो प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश जब कि मैं वहां था तो इनको वह नहीं दिखलाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं। और जब उन्होंने इच्छा की जब उद्धव इस चीज की अनुभूति करें ये ब्रज क्या है, ब्रज को दिखलाने के लिए कैसा उल्लास छाया रहता है ब्रज में, इसलिए अघटन घटन पटियसी जोग माया ने वो लीला उनके आंखों में प्रकट कर दी। देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, बछड़े फुदक रहे हैं अत्यंत धवल पर्ख जैसे ही जैसे बड़े साफ, और कोई कई बछड़े बड़े काले मानो गंगा और जमुना मिल गई, बड़े जोर से फुदक हैं, और गायें उनका थन दूधों से भरा हुआ मानो पृथ्वी को छू देगा, दूध धीरे धीरे चुचुआ रहे हैं। और देखा गायें कृष्ण की माताएं हैं, तो कृष्ण को स्मरण कर अपने बच्चों को दूध नहीं देंगी जब तक कि कृष्ण नहीं को नहीं देंगे, और कृष्ण गाय को संभवतः है मैया जैसा। और देखा क्या बड़े बड़े सांड परस्पर लड़ रहे हैं प्रेतमती गायों के लिए, और सुना जी चारों तरफ में दधि मंथन हो रहा, गोपियां दधि मंथन कर रही, और दधि मंथन करते हुए कृष्ण का लीलाओं का स्मरण कर रही है। गोविंद दामो धर्मार्थवे गोविंद दामो धर्मार्थवे गोविंद बाल्य लीलाओं को और लीलाओं को स्मरण करती हूँ, गान कर रही है। और दधि मंथन से उठा हुआ जो शब्द है मानो वो पिछला मृदंग का पिछला भाग है, हाथों में चूड़ियां हैं वो बज रही है, सुस्वर से गा रही है, तन्मय होकर के मृदंग का बाया भाग कहता है धिक धिक, और ये कहता है ताम, उनको धिक धिक धिक्कार है जो कृष्ण का भजन किया। ये अगला भाग कर रहा था और ये धिक धिक उनका जीवन को धिक्कार है जो कृष्ण का भजन किया। विशेष करके ब्रज की जो रस कृष्ण है नंदन नंदन जसोदा नंदन गोपी नंदन रास रसिक रास बिहारी राधा रमण जो है उनका भजन नहीं किया उनका जीवन को ठीक किया। और सब जगह घी की पत्ती जल रही है, ये नहीं इसे ताप लगता है, आंखें भी खराब हो गई, विशेष कर वो जो सामने से आ रहा वो तो जरूर आंख की दृष्टि को गड़बड़ कर देता है, दिमाग को भी ताप देता है। और घी की बत्ती की जली जो आप प्रदीप होना तो बड़ी भीनी भीनी मधुर सुगंधित उसे निकलती है वो, और बहुत ही अच्छा चारों तरफ में घी की बत्तियां जल रही हैं और उसी के प्रकाश में भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ये गोपियां दही मन और सर्वत्र वेद की ध्वनि उठ रही है, ब्राह्मण जितने हैं वेद की ध्वनि ऋचाएं उस समय में पाठ करते हैं और बालक जैसे जो उनके सखा हैं अरे कन्हैया कहाँ कन्हैया कहाँ उछल कूद करके उन्होंने कहा तो जो माया ऐसी झलक दिखा रही है उद्धव जी देख रहे हैं और क्षण मात्र में ही दृश्य बदल गया। कृष्ण की ब्रज में प्रकट स्थिति का उन्होंने दिखलाया और साथ ही साथ एक क्षण में एकदम बदल गया। उन्होंने देखा प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्नो चति विभाव छन्नयन प्रविशतां पशुनां खुर्रेण इत्यादि। अब उद्धव जी आए ब्रज में, देखा क्या देखा, रथ को देखा, नंद बाबा अपने घर में ले गए, घर में ले जा करके उनको बैठाया। भारतवर्ष में वैदिक रीति है अतिथि सेवा, जो घर में आया उसकी अतिथि की सेवा करते, और ये तो अपना स्वजन अपने भाई का लड़का आया है इसलिए अतिथि समन होना चाहिए, भूख लगी है इसको जरूर। देखा क्या घर में तो कुछ है नहीं, किसके लिए हो, घर में दधि मंथन भी नहीं है, दूध भी नहीं है, काढ़ने वाला कोई किसके लिए निकाले, रसोई बने तो कहां, अभी आंगन में झाड़ू नहीं लगा जब से कृष्ण गए हैं, इतने दिन हो गए झाड़ू नहीं लगा, दो चार महीने तो हो ही गए हैं झाड़ू तक नहीं लगा, और रसोई घर में बर्तन औंधे मुख पड़े हुए हैं, जसोदा मैया तो सब समय विरह में तड़पती रहती है, वो कहां से बनाएगी, सुध बुध बोल गई है, और साथ साथ में जो चूल्हा है उसमें मकड़ों ने जाल बुन दिया है क्योंकि बहुत दिनों तक रसोई, ऐसी दुर्दशा है नंद भवन, वहां पर उनका भंडार भर रहता था किंतु अब भंडार की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए अपने घर में नहीं था कुछ, इसलिए भोजितम परमान्य अपने गांव के अंतिम छोर में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, किसी ब्राह्मण की यहां खबर थी प्यारा उद्धव आया है कृष्ण का सखा, कुछ भोजन बना करके तैयार करके लाए, वो ब्राह्मण सुनकर के अपने घर में परमान्न बनाया, परमान्न समझते हैं ना दूध में अन्न को सिद्ध किया जाता है, किंतु ब्राह्मण के घर में चीनी नहीं, बिना चीनी का ही परमान्न बना, और इसके बाद में उनको खिलाया, उद्धव को भूख लगी थी, जो कुछ मिला बड़े प्रेम के साथ में खाया, और नंद बाबा जी दे रहे हैं गताश्रम, जब उनका थोड़ा सा विश्राम हो गया तो पर्यपृच्छत पाद संवाहन आदि भी अपने सेवकों से उनका पाद संवाहन कराया, थोड़ा विश्राम हो गया तो अब वो चाहते हैं कुछ पूछे अपने लाला के संबंध में कुछ पूछे, किंतु पूछते ही जे मेरा लाला कैसा है गला रुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं, आंखें फर आती हैं, इसलिए डायरेक्ट रूप में नहीं पूछ सकते।
तब उन्होंने
पूछा वचित अंगद, हे मेरे प्यारे महाभारत सखाना सुरनंदना उद्धव, तो मेरे प्यारे हो, देखो मेरा सखा महाभाग बहुत सौभाग्यवान सुरनंदना, सुरनंदन होता है सूर के पुत्र, यह है, यह सुरनंदन वसुदेव, कहते हैं कि उसका कुशल तो है। सुरनंदन क्यों कहा, देखो ये विष्णु वंश और नंद वंश इत्यादि जो देख रहे हैं, इनके मूल पुरुष हैं देव मिढ़ नाम के एक राजा, और वो राजा रहते थे मथुरा में, उनकी दो पत्नियां थीं, एक क्षत्रियाणी और दूसरी थी ग्वाली। क्षत्रियाणी से सूरसेन जी पैदा, और जो ग्वालिन थी उसे परजन्य जी, परजन्य बाबा के नंद बाबा हुए, और सूरसेन के हुए
वसुदेव,
इसलिए दोनों भाई लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरा भैया कुशल से है, कृष्ण का तो कुशल पूछ नहीं सके। आखिर अंत में ही बोले, जो हमारा भैया वसुदेव जी ठीक है ना, उसका कुशल तो है, ओह देखो हमारा भैया बहुत साधु है और जादव वंश भी साधु है, जिनसे कंस द्वेष करता था वो देश विदेश में भाग गए, अब अपने दुर्भाग्य से अपने पाप कर्मों से वो कंस मारा गया, वो आपत तो गया किंतु मरा कृष्ण ने नहीं मारा, उसके पाप ने उसे मारा। कृष्ण अभी दुधमुख बच्चा, वो क्या मारेगा, जो चले गए हैं उसके लिए कृष्ण व्यवस्था कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं युद्धवंशियों को विभिन्न, कहीं मिथिला में कहीं इधर कभी हस्तिनापुर चारों तरफ में चले, और उसकी व्यवस्था में कृष्ण जुटे हुए। ओहो क्या कृष्ण मुझे अपि स्मरत न कृष्ण मातरम सुहृदम सखी, हमारा लाला क्या एक बार भी अपनी मैया को स्मरण करता है, मैया उसके विरह में जो अंधी हो गई है, जितना लाड प्रयाग किया ओखल से उसे बांध दिया और उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, ऐसी मैया को याद करता है कभी सुख। जितने ब्रजवासी हैं जो अधिक वृद्ध कुछ उम्र के हो गए हैं, कृष्ण को अपना बेटा ही मानते, गोदी में सभी खिलाते थे उसको, अपने पुत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं माना। उन जितने ब्रज में माताएं हैं अपने बेटे को उतना प्यार नहीं करती जितना कृष्ण को, पहले कृष्ण जबकि गोचारण करके आते हैं तो पहले कृष्ण की आरती उतारती हैं, बलैया लेती हैं, तब फिर अपने बेटे घरों घर में बुला करके उन्हें खिलाती हैं पिलाती हैं। कृष्ण का भी वैसा, ऐसा कृष्ण क्या सुहृदों को स्मरण कभी करता है, सखी और सखाओं को कभी, जो उनके साथ में खेलता खेलता कहीं जमुना के किनारे, कभी गोवर्धन में, कभी इधर उधर खेलता था, आज उनको कभी उन प्यारे सखाओं को जो एक क्षण भी कृष्ण को नहीं देखने से विरह में तड़पने लगते थे, उन सखाओं को कभी स्मरण करता है। गोपां ब्रजन च आत्मनाथं गावो वृंदावनम्, गोपियों को सखियों को ललिता विशाखा श्रीमती राधिका इत्यादि को क्या कभी स्मरण करता है, जो कितना वो प्यार करती हैं बचपन से ही, उनको कभी कुछ कहा उनके लिए स्मरण किया, वो सारा ब्रज कृष्ण के लिए पागल है। जत्किंचित तृणि गुल्मकी कटमुखम गोष्ठे समस्तं सर्वानंद मुकुंद दैतल नीलां, अरे ब्रजवासियों की तो बात क्या, वहां के एक एक पेड़, वहां के जीव जंतु, यहां तक कि सांप और बिच्छू भी ये सच्चिदानंद में वहां के हैं। और कृष्ण को बड़े प्यारे हैं, लीला के अनुकूल हैं, और तो और एक सर्प कैसे कृष्ण के लीला के अनुकूल हो सकता है। एक समय की बात है, किसी कारण से बिना कारण अकारण मान होता है राधिका, कभी कारण है तो होता ही है, ना होने पर भी ऐसे ही मान कर बैठते। राधिका जी को गंभीर मान हो गया, तो कृष्ण ने बहुत कुछ माना, आज सुन ले उनसे बोल नहीं, मुख इधर कर दिया, पंसी में उनको बुला रहा, तभी कीर्ति शास्त्र से मान नहीं छूटा, राधा जी कृष्ण को छोड़कर के कहीं जा रही हैं अपने कुंड पर। और इतने में एक काला कृष्ण होता है सर्प अजगर, जिसके यहाँ पर गोकुल का ये रहा, वो ऐसे किया फौस ऐसे किया, और राधा जी एकदम डर के मारे दौड़ी सी जा करके कृष्ण की गोदी में बैठ के वही हाँफने लगी, हो गया ना कृष्ण की जो इच्छा थी। ये सांप तक ऐसे जब है तो और लोग ऐसे ब्रज को कृष्ण क्या स्मरण करता है। आत्मनाथम गोपियां, जो आत्मना जिसके आत्मा के ये कृष्ण, मैं कृष्ण की प्राण है, या कृष्ण के भी प्राण वो गोपियां हैं, आधाएं माताएं हैं, रंभाती रहेंगी जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, और तब तक वो दूध किसी हालत में नहीं दे सकते, नहीं दे। और कृष्ण आते ही कुछ कार सुनते ही और सर साथ उनके छूने लग जाएगा, और कृष्ण धारोषण उनका देते हैं, वो सब उनकी मैयाएं हैं। कभी उन माओ माँ का कभी ऐसा करते हैं स्मरण करते हैं वृंदावन, और वृंदावन में सर्वत्र जिसके पैरों की छाप है, वृंदारमणम शपद रमणम प्राविशति, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कृष्ण के छोटे छोटे सुंदर सुंदर मधुर पैर नहीं। ऐसे वृंदावन जहां पर कीड़ाए की जहां पर पला पोसा, उस वृंदावन को क्या वो स्मरण करता है, आहार गिरिराज गोवर्धन उसको क्या स्मरण करता है, जैसे कुंजों में वो खेला गोपियों के साथ में मिला, गोपियों का पद संवाहन किया, वो गिरिराज धन्य है। वहीं पर अन्नकूट उत्सव किया, अपने आप गिरिराज बन गया, चार चतुर्भुज होकर गोवर्धन जहां कहीं रहेगा वो गोवर्धन में ज्योति है। ऐसे गिरिराज गोवर्धन को अपनी क्रीड़ा भूमि को स्मरण करता है। अब प्यास रोने लगे नंद बाबा, ऐसा करते हुए क्या एक बार आएगा। उद्धव जी कहते हैं रोइए मत, आएगा अभी आ, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जरूर आऊंगा कल न परसों, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा है, आएगा जरूर। स्वजनान सकृत इच्छा, क्या एक बार भी अपने माता पिता ब्रज को गायों को गोवर्धन इत्यादि का दर्शन करने के लिए कभी आएगा। ओह कितना सुंदर है उसकी ध्वनि, कितनी सुंदर है वो तिरछा जब देखता है तो कितना सुंदर निराला है, उसके कपोल कितने मधुर और सुंदर हैं, बीच में कुछ पड़ गया है ना, यह सौंदर्य का निशान, और ना तीन फूल जैसी कितनी सुंदर, तद वक्त्रं सुनशं सुस्मितेक्ष, और जब वो मुस्कुराता है मानो सारा विश्व उसके चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर। अब यहां कृष्ण की जहां याद आई एकदम बेबस होकर के नंद बाबा एकदम रोने लगे, गला भी बैठ गया, नहीं कुछ बोल सके। गौरी ने कहा आपका अनुराग परम धन्य है। विश्व में हमने अनुराग देखा किंतु आपके जैसा कहीं नहीं। आपका अनुराग कृष्ण में इतना, आप घबराइए मत। जब प्रतिज्ञा करके संकल्प करके कहा है कि आऊंगा तो जरूर आएगा, इसमें दो राय नहीं। पर ये विलंब किसी कारण से हो रहा है किंतु आएगा जरूर। नंद बाबा फिर रोक, जब थोड़ा सा रुक गया तो फिर रोका। अब इसको मैं फिर 10 मिनट विश्राम करते थे। वो याद है तुमको जो गुप्ता जी की लड़की गाती थी, कृष्ण के बिना
सुनो सुनो लागे,
सुनो सुनो लागे। नहीं याद है, नहीं लिखा। सुनो लागो तो शायद दूसरा कोई। अच्छा दूसरा, तुम दूसरा एक तैयार करके रखना फिर। हाँ यही है। हाँ उसका सुन, तुम लोग भी दोहार करना।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हो मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना, मन रो लागे ना, हो मन रो लागे ना।
जब नंद बाबा प्रेम में विफल हो गए, उनकी गोली बंद हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं हाँ कृष्ण हम लोगों का रक्षक था, ब्रज में जब जब भी विपत्तियां आई दावाग्नि एक बार कृष्ण गायों को चराते हुए सखाओं के साथ में फांदी पड़ने पहुंचे, कंस ने अपना दूत भेजा कि उनको मार डालो, आग लगाओ, गाय मर जाए, कृष्ण तो उनके विरह में ही मर जाए। आग लगी बड़ी भयानक आग, गाय चरते चरते कृष्ण को कुछ पीछा छोड़ करके आगे बढ़ गई और वो ऐसे विकट बन पहुंची जहां पर सरकंडे सूख गए थे, उसमें हाथी डूब गए और उसमें आग लगा दी, चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया, गाय डकरने लगी और फिर सखा लोग जो खोजते हुए आ रहे थे कृष्ण से बिना पूछे हुए गायों को, बोले उस सरकंडे के बन में फंस गए, आग ऐसी चारों तरफ क्षण भर में इधर से उधर, हवा ने उनको इधर उधर फैला दिया, बचने का कोई उपाय नहीं। उस समय सबने विकल होकर के हाथ जोड़े, कृष्णा राम महाबाहो अब जल्दी से हमारी रक्षा करो, सखा लो उत्कंठित होकर के कहने लगे। एक क्षण में कृष्ण आए, बोले जब अपनी आंखें मूंद लो, क्यों मूंद लो, उनकी भावना ये थी मुझे आग खाते हुए देखेंगे तो यशोदा मैया के यहाँ नालिश कर दें और तब यशोदा मैया मुझे मारेगी डांटेगी। एक बार हम लोगों ने कह दिया मिट्टी खाता है, यशोदा मैया ने उसका मुख फाड़ करके देखा, सचू तू मिट्टी खाता है क्या, पेट खराब हो जाएगा, रोग हो जाएंगे और तू मिट्टी खाता है, मैया मैंने खाई, मैं नहीं मिट्टी खाता, अरे मिट्टी नहीं, अच्छा पकड़ सकते, देखा अखिल विश्व ब्रह्मांड उनके मुख में, कितने कितने ब्रह्मा शंकर महेश सब उनके आंखें बंद, पुरोहित को बुलाया ये क्या हुआ, दूसरा ने देखा न क्या देखा, अरे कुछ नहीं ये तो कुछ नजर लगी है, तुम गैया का दान करो और काली गाय की पूंछ और गोबर और मूत्र मिला करके इसका अभिषेक करा दो, दान दक्षिणा दे दो, सब ठीक हो जाए, कभी नहीं देखा कि ये भगवान है, तो इस प्रकार से रक्षा की, वो उनको काली को दमन करके सब लोग रात हो गई, छठी करा में नहीं पहुंच सके, पासी के जंगल में लोग सो गए और कंस के अनुचरों ने आग लगा दी। उस समय कृष्ण ने वैसे ही किया, आपको जैसे अमृत होता है ऐसे उन्होंने सबकी रक्षा कर दी। वो कह रहे हैं दावाग्नि वात वर्षा मूसलाधार बरस रही थी, इंद्र अपनी पूजा ना पा करके ब्रजवासियों ने कृष्ण के परामर्श से गोवर्धन की पूजा की और इसे इंद्र अप्रसन्न हो गया, उस ग्वाले के छोकरे को मैं दिखला दूंगा, उसको भी और ब्रज के सब लोगों को पानी में डुबा दिया, सात दिन तक मूसलाधार वर्षा होती है और कृष्ण ने छत्र की भांति उसको उठाया और सबको उसी में बुलाया, गायों को लाखों करोड़ों ब्रजवासियों को सात दिन तक, फिर इंद्र को पता चला कि ये तो स्वयं भगवान ने उनके चरणों में गिरे अभिषेक किया, उसमें भी रक्षा की। वृषभासुर बैल का रूप धारण करके आषाढ़ का उनको मारने के लिए और ब्रजवासी थर रह रहे थे, केशी आया था ऐसे ही, सर्प अघासुर बकासुर ये सब आए, रक्षा की कृष्ण। ओहो मृत्यु जहां हम लोगों की होने वाली जरूर थी ब्रजवासियों की, ओह कृष्ण ने उन सबकी रक्षा की।
और इस समय हम डूब रहे हैं महासागर में विरह के, जल्दी से रक्षा करो, ये भाव है। और समय तो तुमने रक्षा की, यदि इस समय नहीं रक्षा की तो इस समय मरणांत हम लोगों का है, जरूर मरेंगे। स्मरण कृष्ण, इस प्रकार से कृष्ण की वीरता को, उनकी प्रतिभा को स्मरण करते हुए, और कृष्ण कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इसका स्मरण करते 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 उनकी सारी इंद्रिया शिथिल हो गई, प्रेम में विलीन हो करके, और वो मूर्छित हो गए। इन्होंने देखा कि अद्भुत प्रेम, तो ये नहीं जानते हैं कि ये कृष्ण है, स्वयं भगवान है, और अपना पुत्र मान करके मोहित हो रहे हैं। कुछ संतना देने की चेष्टा की, उनको उठाया, चेतन था, फिर उनको याद है नंद बाबू, फिर होते हुए कहा सरित शैल बल उद्देश मुकुंद पद सर्वत्र ही कृष्ण के चरण चिन्ह, मैं जाता हूं अपने मन को भुलाने के लिए कृष्ण की स्मृति को दूर करें। तो नंदन नंदे सुकुमार उनके पैरों के चिन्ह, और स्मरण होता कृष्ण तो ये जमुना के घाट में आप खेलता था, ब्रज में सर्वत्र खेलता था, ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके नीचे वो खेलता नहीं, और गिरिराज जी का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कृष्ण नहीं गया, सर्वत्र जाकर खेलता था, उनका खेलना हंसना फलना सब फिर याद आने लगे। बोलने लगे जी देखो तो उद्धव तुम समझते हो, हमारा बेटा कैसा था, कंस साधारण नहीं था, हजार हाथियों का बल उसमें था, हजार कैसा बल, जरासंध अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, किंतु चाहता था जी हमारी बेटियों का स्वामी बलवान, उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया कंस की परीक्षा करने की, और कंस मथुरा से और वो महाबन की तरफ में ठहरे हुए थे जरासंध सेनाओं के साथ, यहीं से हाथियों के पैर पकड़कर और घुमा करके फेंका उनकी सेना पर, ये तो बहुत मजबूत है, पहलवान है, विद्वान है, अब उन्होंने अपनी लड़की के साथ में की शादी, 10,000 हाथियों का बल, और लीला में ही लीला में जहां पर वो बैठा था उसको वहां पर कृष्ण सिंह की तरफ में पहुंच गया, कूद गया और उसको पकड़ा और उसको नीचे गिटका झटका दिया, गिरा उसके ऊपर में कूद पड़े, वही छोटा सा कृष्ण, और वो मर गया। कृष्ण कहा कि मैं तो तुमसे खेल कर रहा, यदि खेल ही में मर गया तो मैं क्या करूं। तो उसको लीला में ही उसे मार डाला, ये साधारण है हमारा बेटा, तावत्र महासारम धनुजष्टी इभाराट, जैसे हाथी मतवाला हाथी एक गन्ने को ऐसे पकड़ करके मुख में खा लेता है, ऐसे धनुष यज्ञ के समय में 3 ताल माने कम से कम तो 30-35 हाथ लंबा वज्र का बना हुआ धनुष को लीला में उठा लिया, और उसको प्रत्यंचा कसते ही वो टूट गया, हम बलवान थे। इस प्रकार से प्रलंबासुर को, धेनकासुर को, तृणावर्त को, बकादेय सब दैत्यों को उसने खेल खेल में मार डाला, ये कहते हुए अब उनसे रहा नहीं गया, प्रेम विफल प्रेम में विफल हो गया, चुप हो गए, शांत मानो अब कुछ बोल नहीं पा। उसमें उद्धव जी कहते हैं अह सांत्वना देने के लिए हृदय ने विचार किया, वही तब विलाप करते करते बड़े तड़प रहे हैं, उनको कुछ सांत्वना के दो आप वाक्य तो देनी ही चाहिए। देखो मैं सोच रहा हूं ये मुझे कोई व्यक्ति रो रहा हो तो उसको सांत्वना दिया जाए, रो मत, किंतु मैं इनको कहूं ये नंद बाबा रोइये मत, संसार में वही परम सौभाग्यवान है जो कि कृष्ण का चिंतन मनन करता है, और कृष्ण के लिए उसके आंखों में आंसू आ जाए, ये तो महाभाग्य का लक्षण है। नंद बाबा क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। मैं कैसे कहूं ये तुम मत रो, किंतु कृष्ण ने कहा जी सांत्वना दिया ना, मैं कैसे सांत्वना कहूं, रो। कृष्ण के विरह में संसार का तो यही महाफल है जन्म लेने का, जो कृष्ण कृष्ण कह करके रोए। कृष्ण की कथा कहते हुए कोई रोता है ना तो उसके प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है। तो कृष्ण में जो तन्मय हो गया वही तो जीवन का सौभाग्य है। नंद बाबा तो वही कर रहे हैं, तो क्या कहूं रो मत, या क्या कहूं जो रोइए। यदि रोइए कहता हूं तो संतना नहीं, और यदि कहते हैं रो मत तो यह शास्त्र कहते हैं कि चुप नहीं, तुम पाप कर रहे हो, इसे मन मना मत कर, क्या कर। अंत में मैं सच ही बोलूं, सचमुच में इनका जीवन बड़ा ऊंचा है, सौभाग्यवान है, इसलिए कहे जुआन लाभ के कमाओ। प्राणी मात्र जगत में जितने हैं विश्व ब्रह्मांड में, उनमें आप और मैया यशोदा दोनों साथ, आप वहां परम सौभाग्यवान है। आपकी इस उत्तमता को, भाग्य को जगत का कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है, जो कृष्ण के लिए इतना अनुराग आज तक हमने बहुत देखा, किंतु अनुराग तो है। एक बात और, किसी को सांत्वना देना चाहिए तो उसमें कुछ उसके जैसा हो जाए। यदि कोई रो रहा है किसी के लिए तो हमारी आंखों से भी कुछ आंसू आए तब उसको सांत्वना दे। ऐसे विरही नंद बाबा के सामने कोई आकर के बिना रोए रह नहीं सकता, जैसा वो रो रहे कोई रो नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। या कुछ दो चार बातें सांत्वना की करेगा, उधर समझ नहीं पाए कि मैं क्या सांत्वना दूं, और रो तो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत दुर्भागा हूं, मेरे हृदय में गोपियों जैसा गोपों जैसा प्रेम नहीं, रो तो सकता है किंतु सांत्वना क्या दूं नहीं सकता। फिर उन्होंने सोचा किसी को सांत्वना देने के लिए ये जरूरी है कि जिस विषय के लिए वो रो रहा है उसका मन थोड़ी दूसरी तरफ मिले। कोई अपने संतान के लिए रो रहा है, अरे भाई क्यों रोते हो, भगवान का स्मरण करो। ये ऐसा ही संसार है, इसका तृप्त क्या वो सांत्वना देगा, और फिर उसका मन दूसरी तरफ ले जाने के लिए चेष्टा। किंतु उद्धव कहते हैं कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, इनका मन तो लगा हुआ कृष्ण कृष्ण के लिए रो रहे हैं, इनको कैसे इनका मन हम दूसरी बहन ले जाए, ये तो महापाप का भाग नहीं है। तो आपको क्या करूं, उद्धव जैसे बुद्धिमान लोग, नीतिज्ञ लोग, भक्त लोग तो चिंता नहीं करते, कहते हैं ओ सचमुच में तो वो महाभागा। मैं विचार करके देखता हूं, शास्त्र कहते हैं इसका अतिरिक्त मैं कहा, इसलिए पहले बोले जगत में यदि माता पिता हैं और सौभाग्यवान है कोई तो आपके समान कोई भी नहीं है। नारायण अखिल पुरो, अरे कृष्ण नारायण है, अखिल जगत का गुरु है, सभी उसके पुत्र हैं और उसको अपना पुत्र मान करके रो रहे हैं। फिर सोचने लगे नंद बाबा इतने में सुनकर, अरे तुमने क्या कहा, मुझे सौभाग्यवान कहा, मुझे रोना आता है तुम्हारी अकल पर, ऐसा निर्भोग। मैं सोचता था कि कृष्ण के साथ में रह करके चलाक चतुर बन गया है, तुम तुम्हारी अकल के दांत भी नहीं टूटे हैं, अकल नहीं आई। अरे संसार में जो सबसे बड़ा भारी दुर्भागा है और उसको तुम सौभाग्यवान कह रहे हो, तुम्हारी अकल कहां गई, सोचो तो जरा। तुम कह रहे हो कि कृष्ण अखिल गुरु, जगत का गुरु नारायण है, आप उसको पुत्र मान के रो रहे। मैं तो पहले यही समझता था कि वो मेरा पुत्र है और कुछ नहीं, इसलिए विरह में विकल हो रहा था, मैं चाहता था कि मेरे प्राण निकल जाए, तू नहीं मिटे, बड़ा निष्ठुर है। ब्रह्मा जी ने इसे ब्रज के द्वारा बनाया, पिता तो जगत में एकमात्र था, वही कौन? महाराज दशरथ। अपने पुत्र के विरह में हाराम हाराम और फिर नहीं निकला, प्राण छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं समझता हूं कैसे ब्रह्मा जी ने बनाया। इसलिए ऐसा दुर्भाग्य व्यक्ति जो नारायण को भी अपना पुत्र समझ करके और अपने निष्ठुरता के कारण उसको खो दिया। भगवान तो वहीं रहते हैं जहां कोई प्रेम करे, तो शायद मेरे अंदर में प्रेम नहीं था इसलिए मुझे छोड़ करके चला गया। जहां उसको प्रेम स्नेह मिलता है, लाड प्यार मिलता है, इसलिए वो मथुरा चला गया। किंतु हाय मैं नहीं, उद्धव जी कहने लगे अब क्या करूं, वो समझाने की चेष्टा की। देखो देखो तुम्हारा ये जो पुत्र है, जिसको पुत्र मान रहे हो वो पुत्र नहीं है, ये विश्वस्य बीज जोनी बीज पुरुष है, प्रकृति जोनी है, दोनों से जगत की सृष्टि होती है। कैसे होती है? पुरुष उसमें इच्छा करता है, इच्छा के द्वारा प्रकृति को उद्वेलित करता है और प्रकृति जगत का प्रसव करती है। वो जो बीज और जोनी, जो पुरुष और प्रकृति है, इन दोनों का भी जो परम पुरुष है वो तुम्हारा पुत्र है। रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम, वो पुरुष है कौन? राम और कृष्ण। तुम अपने उनको पुत्र मान बैठा, उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो। अन्य फूतेषु, हाँ देखो तो सर्वत्र वो व्याप्त है, इसलिए विष्णु कह रहा है। उसके अंदर में भी सभी है, उसका अभाव कहीं नहीं है, सर्वत्र वो है, तुम में भी है, खड़क खम्ब सर्वत्र उसके लिए रो रहे। रोना किस लिए होता है? मोह के लिए। मोह कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा, तत्व का ज्ञान। उन्होंने सोचा उद्धव जी ने इनको तत्व का ज्ञान बतलाऊं तो इनका मोह दूर हो जाएगा। मोह दूर होने से होगा, जैसे ये कृष्ण स्वयं भगवान है, और इनको ज्ञान होने से वो मोह भाग जाएगा, फिर अपने आप विरह से तड़पन भी दूर हो जाएगा, ये इनका भाव। कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये पुत्र नारायण है और पुरुष प्रधान है, और पुराणों का भी यही प्रतिपाद्य वस्तु है, वेदों का यही प्रतिपाद्य विषय है। आइए समस्त कारणों का कारण है ये विश्व की योनि है। हे महात्मन, हे नंद बाबा, ऐसा समझिए कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर की बोलिए। नंद बाबा अब तक चुप थे, ब्रह्म ज्ञान सुन करके और उनके आंखों से आंसू निकलना जरा बंद हो गया था, सुन करके और तड़प उठे और कहने लगे उद्धव तुम कृष्ण को भगवान कह रहे हो, तुमने देखा नहीं है ना? थोड़ी सी छाछ के लिए, मक्खन और रोटी के लिए जो मचलता था उसको दिन में 10 बार खाता, उसको तू भगवान कहता है? बात बात में क्रोध क्रोध करता था और उसको तुम कहते हो भगवान? अरे भगवान तो वह है जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जन्म मरण से अतीत है, जिसको क्रोध राग भय द्वेष कुछ नहीं। ये तो मिनटों मिनट में भूख इसको लगती है, मिनट मिनट में ये मचलता है मक्खन के लिए, और मक्खन यहां अपने घर में पेट नहीं भरता, दूसरों घर में मक्खन चोरी करता, ये ब्रह्म बन गया। अरे उद्धव तुम क्या समझते हो? मैंने देखा है ये बात बात में झूठ बोलता है, झूठ तो इसका शबेना है, झूठ बोलता है। अब क्रोधता इसका मैंने देखा है, जो सोदा उसको इसकी मैया उसको बैठा करके और दूध को रक्षा करने के लिए गई, दधि मंथन कर रही थी और उनको स्तन पिला रही थी, और इतना क्रोध आया कि वो मटके को ही तोड़ गया। कितना हो, उसको तुम ब्रह्म कहते हो और भगवान कहते हो, तुम्हारी बुद्धि पर हमें तरस आता है। ऐसा सुनते हुए उद्धव जी कहने जैसे वो मैंने ये गलत कहा, ऐसा हमको नारायण नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत इनका तो और देखते हैं कि विरह का ताप बढ़ गया। अंत में बोले जब देखा जी कोई उपाय नहीं, बाबा इतना व्याकुल मत हो, आगमिष्यत अति दीर्घेण कालेन ब्रजम अच्युत, अच्युत अपने बात का पक्का, जो कहा है वह जरूर करेगा, बस आने वाला ही समझिए। आए आप धैर्य धारण कीजिए, प्रियम विधस्य आपका प्रिय पित्रो पिता माता जो नंद और जो सुधा जी ने आपका और ब्रजवासियों का बिना सागर से बचाने वाला, दुखों से बचाने वाला ये कृष्ण जरूर आएगा। उसने प्रतिज्ञा की है, उसने कंस को रंगभूमि में बिना आयास के ही पछाड़ा। मां खिद्दत महाभाव आप विकल मत हुई, इस प्रकार से कह करके और उनको समझा रहे हैं। और ऐसे करते 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 समझाते और रोते कलपते वो रात बीत गई। अब जब सवेरा हुआ तो नंद बाबा जसोदा जी के पास में चले गए और ये स्नान करके अन्भिक इत्यादि करने के लिए नंदगांव के पास ही एक बहुत सरोवर है जिसका आजकल नाम है कृष्ण कुंड, बस वहां चले गए। स्नान किया और स्नान करके अपनी त्रिसंध्या, किंतु आज मन ही नहीं लग रहा। नंद बाबा का वह चेहरा, उनके भाव सब समय स्मरण आ रहे, कहीं मैं रो नहीं पाता, रोना नहीं आता। नंद बाबा कैसा उनके लिए रो रहे हैं, अद्भुत। इतने में उन्होंने देखा एक अद्भुत चीज, शायद जोग माया की कृपा से देखा, देखा एक कदम्ब कानन है, कदम्ब क्यारी जिसको कहते हैं, उसमें देखा क्या करोड़ों गोपियां उदास बैठी, चेहरे फीके हो गए, बसन उनके मैले हो गए हैं, इसलिए वो कपड़े नहीं धुलाती जो ये कृष्ण संबंधी आंसू हैं और धुली भी ब्रज की है, इसलिए वो उसे साफ नहीं करती। प्रेम में सब विपद होकर के मानो अब मरणासन्न है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे सही, एक सोने का रथ अभी देखा सवेरे, ये सोने का रथ कैसे आ गया नहीं जानती हो? अरे कंस मारा गया है ना, उसका पिंड देने का 13वीं दिन है यार, उसको पिंड देना है। तो कंस को पिंड देने के लिए पितृ तर्पण करने के लिए वहां कुछ शायद नहीं है, ब्रज में तो बहुत है ना, सारी गोपियां सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में मर गए होंगे और उनका यह पिंड लेकर के उसका तर्पण किया, इसलिए आया है। दूसरी सखी बोलती है नहीं नहीं तुम नहीं समझते, ये तो कृष्ण ने भेजा है, वह वही रथ है जिसमें अक्रूर आया था और हमसे लेकर के चला गया, वो क्रूर था, अक्रूर नहीं था, तो वो सोने के रथ उस पर आया है, जानते हो किस लिए? एक सखी और बोली थी बीच में, मैं जानती हूं, ये कृष्ण जब तक ब्रज में था चरवाहा था, गौओं को चराता था, ब्रज की लठिया लेता, उसके अलंकार फूलों के थे, सर्वत्र वो फूलों की सब माला और ये सब पहनता, अब तो हो गया है ना मथुरा का राजा, महाराज मथुरा तीस हो गया, अपनी मैया को ये दिखलाना चाहता है जब मैं गौ चरवाहा नहीं रहा, इसलिए सोने के रथ पर बैठा करके भेजा है, जाओ देखो जिसका नौकर सोने के रथ पर चलता है तो वो कैसा होगा, ये जौलस दिखलाने के लिए। उद्धव जी ने कहा ओ, मेरा रथ में आना प्राप्त है, अरुचिकर हे पृथ्वी दुखंडित हो जाओ, मैं उसके अंदर में समा जाऊं, मुझे कभी नहीं आना चाहिए। कृष्ण ने बैठा दिया, मैं क्या करूं, किंतु उस समय मैं नहीं सोचा और मैं गैला में वैजयंती माला देकर के क्यों बस। एक ने कहा नहीं सखी, और कुछ बात हम लोगों से तो उसका कोई संबंध नहीं, मानो तो है नहीं तो मानो, न तो नहीं है, तो हमारा तो संबंध मानने के ऊपर निर्भर था ना। वो मानता था प्रियतम, प्रियतमा हम उनको मानती थी प्रियतम। गोपी जन बल्लभ, वो गोपियों का प्राण बल्लभ था, तो ये मानने पर था, मानो तो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, हम उसकी कोई नहीं है और हमारा भी वो कोई नहीं है, किंतु यही तो मुश्किल है, हम भूल नहीं सकती, वो तो भूल जाता है। तो देखो अब नंद बाबा और यशोदा मैया वो कभी भी भूल नहीं सकता, क्यों नहीं भूल सकता, क्या तू कृष्ण का शरीर ही यशोदा नंद बाबा के रक्त से बना है, जैसे कल बतला रहा था शायद या परसों, जैसे एक घट है, घट बनता है कुमार बनाता है और बनाता है मिट्टी से, और फिर मिट्टी में चक्र की जरूरत होती है, चक्र पर रखता है उसे डंडे से घुमा करके फिर बना करके सूते से काटता है। घट ये कहे कि हमारा कुम्हार से सूते से चक्र से कोई संबंध नहीं है, मानने की बात है, कोई संबंध नहीं, किंतु यशोदा मैया को ये कैसे भूल सकता है, जिसका शरीर ही बना है उनके रक्त से उनके दूध से, छोड़ने पर भी नहीं छूटेगा वो सब। हाँ तो मैया को सांत्वना देने के लिए आ सकते उद्धव, देखो वो रास्ता नहीं है, तुम भूल से आगे, वो रास्ता उधर का है, उधर में तुम्हारी मैया बाप, उधर में जाओ उनको सांत्वना, हमारा संबंध तो टूट गया है जानते हो, मानो तो है नहीं तो नहीं, हम उसकी कोई नहीं। इतना कहते कहते एकदम पिकल हो गई। इतने में एक दूसरी गोपी ने कहा, देखो ये मालूम होता है ये कौन है, ये कौन है, ये तम वीक्ष कृष्णानुचरण बजर। एक गोपी कहते हैं मैं समझ नहीं गई ये कौन है, कौन है, कृष्ण का अनुचर है, अनुचर है, कृष्ण ने इसे भेजा, कैसे तुम कैसे समझ गए ये इनका अनुचर है, ओह इसलिए पूछिए समझिए, हमारी नाक अभ्रांत है, अभ्रांत माने क्या,
भूल नहीं कर सकती,
जीवा बोल सकती है और मन चिंतन कर सकता है, इंद्रिया अपना अपना काम कर सकती है, उसमें भूल हो सकता है, देखने में भी आंखों में भूल हो सकती है, किंतु हमारे आंख नाके अभ्रांत है। ये कृष्ण का अनुचर इसलिए कहती हूं कि कृष्ण का वनमाला पहना है ये, और कृष्ण की वो सब जितने पोशाक हैं अलंकार है ये इसने पहना है, इसने पहन लिया है कि उसने पहना दिया ये मेरी समझ में नहीं आता, कौन पहनाया या पहन करके आया, किंतु अनुचर जो है क्यों, देखो कृष्ण की दी हुई वैजयंती माला पहना उसमें अपना सुगंध तो है, जैसे इसमें भी बड़ी सुगंध है, किंतु कृष्ण के अंगों में ऐसी कोई सुगंध है मतवारी जो उस फूल को के सुगंध को भी ढक करके वो अपना परिचय देती है, जय कृष्ण को अंगों का मैं बन, कृष्ण के साथ में बहुत दिन रही ना, एक साथ में रहे खेले, इसलिए उसके अंगों का गंध कैसा सुगंध होता मुझे याद है, इसलिए मालूम होता है ये कृष्ण की वैजयंती माला है और उसने शायद पहना दिया है और पहना करके भेजा है, तुम जरूर उसका। इतने में गोपियां ले गई भीतर में थोड़ा और उद्धव जी ने देखा एक सोने की पुतली श्वास बंद वर्णासन फूलों की सज्जा पर, कमल के फूलों की सज्जा पर सोई हुई है, उनकी सहेलियों ने देखा जीवित है कि अब मर गई, शायद ये मरी गई, कृष्ण का दर्शन नहीं पाएगी, आएगी जो नाक में रूप देकर के देखा जी जीवित है कि देखा। अभी कुछ कुछ प्राण हैं, कुछ कुछ इतने में वो जो सो रही थी एकदम जैसे दिव्य उन्माद में जो कोई बकने लगता है कुछ इधर उधर की बात, ऐसे कुछ बोलने लगी। क्या बोल रही है? ध्यानती कृष्ण संगम। उसने देखा जो कृष्ण हमें छोड़कर के जदुपुरी गए और वहां पर बिना स्त्री के तरह नहीं सकते, वहां की स्त्रियों से मिले हैं और इसके बाद मिल करके हमारे पास में आए हैं। कहते कि मैं कहां गया था, मैं वो कहते अरे तुम्हारे अंगों में तो चिन्ह है जो वहां तू गया था, कैसे छिपाएगा। कृष्ण मान कर रहे हैं, मान करने के बाद में जबकि नहीं मानी तो कृष्ण थोड़ी से दूर के लिए चले जाते हैं। अब वही संग ध्यान कर रही उनका संग और अत्यंत मान हुआ मूर्छित है और उस मूर्छे में ही मान हुआ और मान करके कहा अब कहने लगी, जो कहने लगी इसी को अब कहते हैं भ्रमर गीत। और समय अधिक हो गया और फिर हमको आना है बोलना है, अभी प्रसंग अभी 10 दिन तक कभी और चल सकता है, बहुत विषम और बढ़ता जाएगा। वो कृष्ण उद्धव जी ठीक उसी समय उद्धव आए जिस समय में उनका ध्यान कर रही है अंग संगम मान है, उस समय में बड़ा क्रोध है, बड़ा कुटिल है, धूर्त है मन में ऐसा सोच। उसी समय में देखा जो एक कोई भावरा काला वहीं पर उड़ता हुआ राधा जी के चरण कमलों को कमल का फूल समझकर और उसके सुगंध से उड़ करके राधा जी के अंगों में भी गंध है पैरों की तरफ में मड़राने लगा। और उसी समय में राधा जी को जो मान पड़ा, भौरा कहां से आया मधुपुरी, अरे तू मधु पान करके मत हो गया है, मधु पक्की तब बंद हो मास की शांति कुछ भी ललित मारा तुम कुमेश बात मधुपति तन मानी नान जद सदस्य प्रतम दूर अभी हट जाओ यहां से भगो भगो, क्यों आए मनाने के लिए हमें, उस काले ने भेजा है तुम काले को, तुम तो और धूर्त हो, काला तो धूर्त ही है, किसी काले को कोई आदमी वशीभूत कर सकता है उससे अधिक धूर्त हो तो जरूर तुम उसे भी धूर्त हो। मधुपुरी माने मधु माने होता है मदिरा, मधुपुरी माने मधुरा मधु का भंडार माने शराब का भंडार, तुम वहां से आया है मधुपान करके ज्ञान नहीं है अपवित्र, हटो हटो हमारे पैरों को छोड़ो, ये मनाने का लक्षण नहीं, तुम कहां से समझेगा जे तुम मनाना है पैसे का। अरे तू अपने गोंफों पर पीला रंग कुमकुम कहां से धारण कर लिया, हाँ ओ तुम ब्रज वहां होगा मथुरी पर पुरी में और कृष्ण एक मानिनी के पास में गए हैं मनाने के लिए और जब उसका आलिंगन किया तो उनका कुमकुम कृष्ण के माला पर लगा, तुम उसी माला पर बैठा होगा इसलिए कुमकुम लेकर के हमको मनाने है, यही मनाना है अपवित्र मूर्ख फट जा, तुम्हारा जैसा मनी मनी माने मालिक जैसा है वैसा तू ही तू काला है पीता है, जानते हो उसको अकल नहीं है जी कहां पर आना चाहिए कहां पर नहीं, जैसे भ्रम तुम है काला उसको भी ज्ञान नहीं, यदि वो वहां के जादुओं को मालूम हो जाएगी हमारी पत्नियों से ये प्रेम करता है क्या करेंगे, हथियार उठा लेंगे, विद्रोह कर देंगे और उसको दुरुस्त कर देंगे। तो ये जिसको ज्ञान है उसका दुरुस्त कर देंगे, तुम्हारा हमारे मन में इस प्रकार से उपकार कर देंगे। और अंत में इसका जो वर्णन है पीछे करूंगा, इसके बाद में उद्धव जी का कुछ संवाद आएगा और इसके बाद में उद्धव जी को भी लौटेगा। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही हृदय द्रावक यह है, श्रीमद् भागवत का यह प्राण है। इसलिए फिर कभी समय मिलेगा, आप लोग समय से बुलाएंगे, मैं आकर के इस समय कुछ प्रकाश करूंगा।
जोगर कथा बोले समय जोगर कथा बोले
कहा करके रोए, कृष्ण की कथा कहते हुए कोई रोता है ना तो उसके प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है। तो कृष्ण में जो तन्मय हो गया वही तो जीवन का सौभाग्य है। नंद बाबा तो वही कर रहे हैं, तो क्या कहूं, रो मत, या क्या कहूं, जो रोइए, यदि रोइए कहता हूं तो संतना नहीं हूं। और यदि कहते हैं रो मत तो ये शास्त्र कहते हैं कि ये चुप नहीं, तुम पाप कर रहे हो, इसे मन मना मत कर, क्या कर। अंत में मैं सच ही बोलूं, सचमुच में इनका जीवन बड़ा ऊंचा है, सौभाग्यवान है, इसलिए कहे जुआन प्राणी मात्र जगत में जितने हैं विश्व ब्रह्मांड में, उनमें आप और मैया यशोदा दोनों साथ, आप हाँ परम सौभाग्यवान है। आपकी इस उत्तमता को, भाग्य को जगत का कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है, जो कृष्ण के लिए इतना अनुराग आज तक हमने बहुत देखा, किंतु अनुराग तो है नहीं। एक बात और, किसी को सांत्वना देना चाहिए तो उसमें कुछ उसके जैसा हो जाए। यदि कोई रो रहा है किसी के लिए तो हमारी आंखों से भी कुछ आंसू आए तब उसको सांत्वना दे। ऐसी विरही नंद बाबा के सामने कोई आकर के बिना रोए रह नहीं सकता, जैसा वो रो रहे कोई रो नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, या कुछ दो चार बातें सांत्वना की करेगा। उद्धव समझ नहीं पाए कि मैं क्या सांत्वना दूं, और रो तो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत दुर्भाग्य, मेरे हृदय में गोपियों जैसा गोपों जैसा प्रेम नहीं, रो तो सकता है किंतु सांत्वना क्या दूं। फिर उन्होंने सोचा किसी को सांत्वना देने के लिए ये जरूरी है कि जिस विषय के लिए वो रो रहा है उसका मन थोड़ी दूसरी तरफ मिले ना। कोई अपने संतान के लिए रो रहा है, अरे भाई क्यों रोते हो, भगवान का स्मरण करो, ये ऐसा ही संसार है, इसका अतिरिक्त क्या वो सांत्वना देगा। और फिर उसका मन दूसरी तरफ ले जाने के लिए चेष्टा, किंतु उद्धव कहते हैं कि मैं तो आशा कर नहीं सकता। इनका मन तो लगा हुआ कृष्ण कृष्ण के लिए रो रहे हैं, इनको कैसे इनका मन हम दूसरी बहन ले जाएं, ये तो महापाप का भाग नहीं रहता। तो आपको क्या करूं, उद्धव जैसे बुद्धिमान लोग, नीतिज्ञ लोग, भक्त लोग चिंता नहीं करते, कहते हैं सचमुच में तो वो महाभाग, मैं विचार करके देखता हूं, शास्त्र कहते हैं इसका अतिरिक्त मैं का। इसलिए पहले बोले जगत में यदि माता पिता हैं और सौभाग्यवान है कोई तो आपके समान कोई भी नहीं है। नारायण अखिल पुरो, अरे कृष्ण नारायण है, अखिल जगत का गुरु है, सभी उसके पुत्र हैं और उसको अपना पुत्र मान करके रो रहे हैं। फिर सोचने लगे नंद बाबा इतने में सुन कर, अरे तुमने क्या कहा, मुझे सौभाग्यवान कहा, मुझे रोना आता है तुम्हारी अकल पर, ऐसा निर्भो मैं सोचता था कि कृष्ण के साथ में रह करके चलाक चतुर बन गया, तुम तुम्हारी अकल के दांत भी नहीं टूटे हैं, अखिल नहीं आई। अरे संसार में जो सबसे बड़ा भारी दुर्भागा है और उसको तुम सौभाग्यवान कह रहे हो, तुम्हारी अकल कहां गई, सोचो तो जरा, तुम कह रहे हो कि कृष्ण अखिल गुरु, जगत का गुरु नारायण है, आप उसको पुत्र मान के रो रहे। मैं तो पहले यही समझता था कि वो मेरा पुत्र है और कुछ नहीं, इसलिए विरह में विकल हो रहा था। मैं चाहता था कि मेरे प्राण निकल गए, तुम नहीं मिले। बड़ा निष्ठुर है, ब्रह्मा जी ने इसे ब्रज के द्वारा बनाया। पिता तो जगत में एकमात्र था, वही कौन? महाराज दशरथ। अपने पुत्र के विरह में हाराम हाराम और फिर नहीं प्राण छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं समझता हूं कैसे ब्रह्मा जी ने बनाया। इसलिए ऐसा दुर्भाग्य व्यक्ति जो नारायण को भी अपना पुत्र समझ करके और अपने निष्ठुरता के कारण उसको खो दिया। भगवान तो वहीं रहते हैं जहां कोई प्रेम करे, तो शायद मेरे अंदर में प्रेम नहीं था, इसलिए मुझे छोड़ करके चला गया। जहां उसको प्रेम स्नेह मिलता है, लाड प्यार मिलता है, इसलिए वो मथुरा चला गया। किंतु हाय मैं नहीं, उद्धव जी करने लगे, अब क्या करूं? वो समझाने की चेष्टा, देखो देखो तुम्हारा ये जो पुत्र है, जिसको पुत्र मान रहे हो, वो पुत्र नहीं है, ये विश्वस्य बीज जोनी, बीज पुरुष है, प्रकृति जोनी है, दोनों से जगत की सृष्टि होती है। कैसे होती है? पुरुष उसमें इच्छा करता है, इच्छा के द्वारा प्रकृति को उद्वेलित करता है और प्रकृति जगत का प्रसव करती है। वो जो बीज और जोनी, जो पुरुष और प्रकृति है, इन दोनों का भी जो परम पुरुष है वो तुम्हारा पुत्र है। रामो मुकुंद पुरुष प्रधान, वो पुरुष है कौन? राम और कृष्ण। तुम अपने उनको पुत्र मान बैठा, उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो। अन्य भूतेश, हाँ देखो तो सर्वत्र वो व्याप्त है, इसलिए विष्णु कह रहा है। उसके अंदर में भी सभी है, उसका अभाव कहीं नहीं है, सर्वत्र वो है, तुम में भी है, खड़ग खम्भ सर्वत्र, उसके लिए रो रहे हैं। रोना किस लिए होता है? मोह के लिए। मोह कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा, तत्व का ज्ञान। उन्होंने सोचा उद्धव जी ने इनको तत्व का ज्ञान बतलाऊं तो इनका मोह दूर हो जाएगा। मोह दूर होने से होगा, जे जे ये कृष्ण स्वयं भगवान है, और इनको ज्ञान होने से वो मोह भाग जाएगा, फिर अपने आप विरह से तड़पन भी दूर हो जाएगा, ये इनका भाव। कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये पुत्र नारायण है और पुरुष प्रधान है, और पुराणों का भी यही प्रतिपाद्य वस्तु है, वेदों का यही प्रतिपाद्य विषय है। आइए समस्त कारणों का कारण है ये विश्व की जोनी है। हे महात्मन, हे नंद बाबा, ऐसा समझिए कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर की बोली। नंद बाबा अब तक चुप थे, ब्रह्म ज्ञान सुन करके और उनके आंखों से आंसू निकलना जरा बंद हो गया, सुन करके और तड़प उठे और कहने लगे, उद्धव तुम कृष्ण को भगवान कह रहे हो, तुमने देखा नहीं है ना? थोड़ी सी छाछ के लिए, मक्खन और रोटी के लिए जो मचलता था उसको जिस दिन में 10 बार खाता है उसको तू भगवान कहता है? बात बात में क्रोध क्रोध करता था और उसको तुम कहते हो भगवान? अरे भगवान तो वह है जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जन्म मरण से अतीत है, जिसको क्रोध राग भय द्वेष कुछ नहीं, ये तो मिनटों मिनट में भूख इसको लगती है, मिनट मिनट में ये मचलता है मक्खन के लिए, और मक्खन या अपने घर में पेट नहीं भरता, दूसरों घर में मक्खन चोरी करता, ये ब्रह्म बन गया। अरे उद्धव तुम क्या समझते हो, मैंने देखे ये बात बात में झूठ बोलता है, झूठ तो इसका शबेना है, झूठ बोलता है। अब क्रोधता इसका मैंने देखा है, जो सोदा उसको इसकी मैया उसको बैठा करके और दूध को रक्षा करने के लिए गई, दधि मंथन कर रही थी और उनको स्तन पिला रही थी, और इतना क्रोध आया कि वो मटके को ही तोड़ दिया। इतना क्रोध, इसको तुम ब्रह्म कहते हो और भगवान कहते हो, तुम्हारी बुद्धि पर हमें तरस आता है। ऐसा सुनते हुए उधर लिखने की से मैंने ये गलत कहा, ऐसा हमको नारायण नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत इनका तो और देखते हैं कि गृह का ताप बढ़ गया। अंत में बोले, जब देखा जी कोई उपाय नहीं, बाबा इतना व्याकुल मत हो, आगमिष्यत अति दीर्घेण कालेन ब्रजम अच्युत, अच्युत अपने बात का पक्का, जो कहा है वो जरूर करेगा, बस आने वाला ही समझिए, आएगा। आप धैर्य धारण कीजिए। प्रियम विधस्य, आपका प्रिय पित्रो, पिता माता जो नंद और यशोदा जी ने आपका, और ब्रजवासियों का विरह सागर से बचाने वाला, दुखों से बचाने वाला ये कृष्ण जरूर आएगा। उसने प्रतिज्ञा की है, उसने कंस को रंगभूमि में बिना आयास के ही पछाड़ा। मां खिद्दत महाभाव, आप विकल मत हुई, इस प्रकार से कह करके और उनको समझा रहे हैं, और ऐसे करते 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 समझाते और रोते कलपते वो रात बीत गई। अब जब सवेरा हुआ तो नंद बाबा यशोदा जी के पास में चले गए, और ये स्नान करके अन्भिक इत्यादि करने के लिए नंदगांव के पास ही एक बहुत सरोवर है जिसका आजकल नाम है कृष्ण कुंड, बस वहां चले गए, स्नान किया और स्नान करके अपनी कृष्ण ध्यान ली, किंतु आज मन ही नहीं लगा। नंद बाबा का वह चेहरा, उनके भाव सब समय स्मरण आ रहे, कहीं मैं रो नहीं पाता, रोना नहीं आता, नंद बाबा कैसा उनके लिए रो रहे हैं, अद्भुत। इतने में उन्होंने देखा एक अद्भुत चीज, शायद जोग माया की कृपा से मिला, देखा एक कदम्ब कानन है, कदम्ब क्यारी जिसको कहते हैं, उसमें देखा क्या, कुरुण गोपियां उदास बैठी, चेहरे फीके हो गए, बसन उनके मैले हो गए हैं, इसलिए वो कपड़े नहीं धुलाती, ये कृष्ण संबंधी आंसू हैं और धुली भी ब्रज की है, इसलिए वो उसे साफ नहीं करती, प्रेम में सब विफल होकर के मानो अब मरणासन्न है, एक दूसरे से बातें कर रही है। अरे सही, एक सोने का रथ अभी देखा सवेरे, ये सोने का रथ कैसे आ गया नहीं जानती हो, अरे कंस मारा गया है ना, उसका पिंड देने का 13वीं दिन है, उसको पिंड देना, तो कंस को पिंड देने के लिए पितृ तर्पण करने के लिए वहां कुछ शायद नहीं है, ब्रज में तो बहुत है ना, सारी गोपियां सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में मर गए होंगे, और उनका यह पिंड लेकर के उसका तर्पण किया, इसलिए आया है। दूसरी सखी बोलती है, नहीं नहीं तुम नहीं समझते, ये तो कृष्ण ने भेजा है, वह वही रथ है जिसमें अक्रूर आया था और हमसे लेकर के चला गया, वो क्रूर था, अक्रूर नहीं, तो वो सोने के रथ उस पर आया है, जानते हो किस लिए? एक सखी और बोली थी बीच में, मैं जानती हूं, ये कृष्ण जब तक ब्रज में था चरवाहा था, गौओं को चराता था, ब्रज की लठिया लेता, उसके अलंकार फूलों के थे, सर्वत्र वो फूलों की सब माला और ये सब पहनता। अब तो हो गया है ना मथुरा का राजा, महाराज मथुरा की हो गया। अपनी मैया को ये दिखलाना चाहता है कि अब मैं गौ चरवाहा नहीं रहा, इसलिए सोने के रथ पर बैठा करके भेजा है। जाओ देखो जिसका नौकर सोने के रथ पर चलता है तो वो कैसा होगा। ये जौलस दिखलाने के लिए उद्धव जी ने कहा निराश्रत में आना प्राप्त है और उच्च कर हे पृथ्वी दुखंडित हो जाओ, मैं उसके अंदर में समा जाऊ, मुझे कभी नहीं आना चाहिए। कृष्ण ने बैठा दिया मैं क्या करूं, किंतु उस समय मैं नहीं सोचा और मैं गैला में वैजयंती माला देकर के क्यों बस। इसने कहा नहीं सखी और कुछ बात हम लोगों से तो उसका कोई संबंध नहीं, मानो तो है नहीं तो मानो न तो नहीं है, तो हमारा तो संबंध मानने के ऊपर निर्भर था। वो मानता था प्रियतम प्रियतमा, हम उनको मानती थी प्रियतम। गोपी जन बल्लभ, वो गोपियों का प्राण बल्लभ था, तो ये मानने पर था, मानो तो मानो नहीं मानो नहीं मानो, हम उसकी कोई नहीं है और हमारा भी वो कोई नहीं है, किंतु यही तो मशीन है, हम भूल नहीं सकती, वो तो भूल जाता है। तो देखो अब नंद बाबा और यशोदा मैया वो कभी भी भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता, क्योंकि कृष्ण का शरीर ही यशोदा नंद बाबा के रक्त से बना है। जैसे कल बतला रहा था शायद या परसों, जैसे एक घट है, घट बनता है कुमार बनाता है और बनाता है मिट्टी से, और फिर मिट्टी में चक्र की जरूरत होती है, चक्र पर रखता है उसे डंडे से घुमा करके फिर बना करके सूते से काट। घट ये कहे कि हमारा कुम्हार से सूते से चक्र से कोई संबंध नहीं है, मानने की बात है, कोई संबंध नहीं, किंतु यशोदा मैया को ये कैसे भूल सकता है, जिसका शरीर ही बना है उनके रक्त से उनके दूध से, छोड़ने पर भी नहीं छूटेगा वो सब। हाँ तो मैया को सांत्वना देने के लिए उद्धव देखो वो रास्ता नहीं है, तुम भूल से आगे वो रास्ता उधर का है, उधर में तुम्हारी मैया बात, उधर में जाऊं उनको सांत्वना, हमारा संबंध तो टूट गया है जानते हो, मानो तो है नहीं तो नहीं, हम उसकी कोई नहीं। इतना कहते कहते एकदम विकल हो गई। इतने में एक दूसरी गोपी ने कहा देखो ये मालूम होता है ये कौन है, ये कौन है ये, तम वीक्ष कृष्णा विचारण बजस। एक गोपी कहते हैं मैं समझ नहीं ये कौन है, कौन है, कृष्ण का अनुचर है, अनुचर है कृष्ण ने इसे भेजा, कैसे तुम कैसे समझ गए ये इनका अनुचर है। ओहो इसलिए पूछिए समझिए, हमारी नाक अभ्रांत है, अभ्रांत माने क्या,
भूल नहीं कर सकती,
जीवा बोल सकती है और मन चिंतन कर सकता है, इंद्रिया अपना अपना काम कर सकती है, उसमें भूल हो सकता है, देखने में भी आंखों में भूल हो सकती है, किंतु हमारे आंख नाके अभ्रांत। ये कृष्ण का अनुचर इसलिए कहती हूं कि कृष्ण का वनमाला पहना है ये, और कृष्ण की वो सब जितने पोशाक हैं अलंकार है ये इसने पहना है, इसने पहन लिया है कि उसने पहना दिया ये मेरी समझ में नहीं आया, कौन पहनाया या पहन करके आया, किंतु अनुचर जो है क्यों, देखो कृष्ण की दी हुई वैजयंती माला पहना उसमें अपना सुगंध तो है, जैसे इसमें भी बड़ी सुगंध है किंतु कृष्ण के अंगों में ऐसी कोई सुगंध है मतवारी जो उस फूल को के सुगंध को भी ढक करके वो अपना परिचय देती है, जय कृष्ण को अंगों का मैं बन, कृष्ण के साथ में बहुत दिन रही नहीं, एक साथ में रहे खेले, इसलिए उसके अंगों का गंध कैसा सुगंध होता मुझे याद है, इसलिए मालूम होता है ये कृष्ण की वैजयंती माला है और उसने शायद पहना दिया है और पहना करके भेजा है,
तुम जरूर
काम। इतने में गोपियां ले गई भीतर में थोड़ा और उद्धव जी ने देखा एक सोने की पुतली श्वास बंद वर्णासन फूलों की सज्जा पर, कमल के फूलों की सज्जा पर सोई हुई है। उनकी सहेलियों ने देखा जीवित है कि अब मर गई, शायद ये मरी हो, कृष्ण का दर्शन नहीं पाएगी, आएगी जो नाक में रूप देकर के देखा जी जीवित है कि देखा अभी कुछ कुछ प्राण है, कुछ कुछ। इतने में वो जो सो रही थी एकदम जैसे दिव्य उन्माद में जो कोई बकने लगता है कुछ इधर उधर की बात, ऐसे कुछ बोलने लगे। क्या बोल रही है? ध्यानती कृष्ण संगम। उसने देखा जो कृष्ण हमें छोड़कर के जदुपुरी गए और वहां पर बिना स्त्री के तरह नहीं सकते, वहां की स्त्रियों से मिले हैं और इसके बाद मिल करके हमारे पास में आए हैं। कहते कि मैं कहां गया था, मैं वो कहते अरे तुम्हारे अंगों में तो चिन्ह है जो वहां तू गया था, कैसे छिपाएगा? कृष्ण मान कर रहे हैं, मान करने के बाद में जबकि नहीं मानी तो कृष्ण थोड़ी से दूर के लिए चले जाते हैं। अब वही संग ध्यान कर रही उनका संग और अत्यंत मान हुआ मूर्छित है और उस मूर्छे में ही मान लिया और मान करके कहा अब कहने लगी। जो कहने लगी इसी को कहते हैं भ्रमर गीत। और समय अधिक हो गया और फिर हमको आना है बोलना है, अभी प्रसंग अभी 10 दिन तक कभी और चल सकता है, बहुत विषम और बढ़ता जाएगा। वो कृष्ण उद्धव जी ठीक उसी समय उद्धव आए जिस समय में उनका ध्यान कर रही है अंग संगम मान है। उस समय में बड़ा क्रोध है, बड़ा कुटिल है, थूर्त है मन में ऐसा सोच। उसी समय में देखा जो एक कोई भौंरा काला वहीं पर उड़ता हुआ राधा जी के चरण कमलों को कमल का फूल समझकर और उसके सुगंध से उड़ करके राधा जी के अंगों में भी गंध है पैरों की तरफ में मड़राने लगा। और उसी समय में राधा जी को जो मार पड़ा भौरा कहां से आया मधुपुरी, अरे तू मधुपान करके मत हो गया है, मधु पक्की तो बंधो माश की शांति कुछ भी ललित माला तुम कुमेश बात मत पति तन मान नान प्रसाद सदस्य अभी हट जाओ यहां से भगो भगो। क्यों आए? मनाने के लिए हमें उस काले ने भेजा है, तुम काले को तुम तो और धूर्त हो, काला तो धूर्त ही है। किसी काले को कोई आदमी वशीभूत कर सकता है उससे अधिक धूप तो जरूर तुम उसे भी धूप। मधुपुरी माने मधु माने होता है मदिरा, मधुपुरी माने मधुरा मधु का भंडार माने शराब का भंडार। तुम वहां से आया है मधुपान करके ज्ञान नहीं है अपवित्र, हटो हटो हमारे पैरों को छोड़ो, ये मनाने का लक्षण नहीं। तुम कहां से समझेगा जे तुम मनाना है पैसे? अरे तू अपने गोंफों पर पीला रंग कुमकुम कहां से धारण कर लिया? हाँ ओ तुम ब्रज वहां होगा मथुरी पर पुरी में और कृष्ण एक मानिनी के पास में गए हैं मनाने के लिए और जब उसका आलिंगन किया है तो उनका कुमकुम कृष्ण के माला पर लगा, तुम उसी माला पर बैठा होगा इसलिए कुमकुम लेकर के हमको मनाने यही मनाना है अपवित्र। मूर्ख हट जा, तुम्हारा जैसा मनी, मनी माने मालिक, जैसा है वैसा तू ही तू, कालाहट की तरह जानते हो, उसको अकल नहीं है जी कहां पर आना चाहिए कहां पर नहीं। जैसे भ्रम तुम है काला, उसको विज्ञान नहीं। यदि वो वहां के जागरों को मालूम हो जाएगी हमारी पत्नियों से ये प्रेम करता है, क्या करेंगे, हथियार उठा लेंगे, विद्रोह कर देंगे और उसको दुरुस्त कर देंगे। तो ये जिसको ज्ञान है उसका दूर को करके तुम्हारा हमारे मन में इस प्रकार से बात करनी होगी और अंत में इसका जो वर्णन है पीछे करना। इसके बाद में उद्धव जी का कुछ संवाद आएगा और इसके बाद में उद्धव जी को भी लौटेगा, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही हृदय द्रावक यह है। श्रीमद् भागवत का यह प्राण है। इसे फिर कभी समय मिलेगा, आप लोग समय से बुलाएंगे, मैं आकर के इस समय कुछ प्रकाश करूंगा।
जोगर कथा बोले दिन, उचित समय जोगर कथा बोले दिन का।